नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नामरूप में 12,000 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य के दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज जहाज की सवारी करते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत 25 स्कूली छात्रों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुवाहाटी के पश्चिम बोरागांव में असम आंदोलन के 860 शहीदों की स्मृति में नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने हवाई अड्डे पर असम के पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि टर्मिनल भवन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरित है।
इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा गया। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, इंडोर फॉरेस्ट जैसी व्यवस्था है, चारों तरफ प्रकृति से जुड़ा डिजाइन है। यहाँ आने वाला हर यात्री सुकून महसूस करे। इसकी बनावट में बांस का खास इस्तेमाल किया गया है। बांस असम के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो यहाँ मजबूती भी दिखाता है और खूबसूरती भी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में राज्य में कई ऐतिहासिक आधारभूत परियोजनाएं शुरू की गईं और पूरी भी की गईं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में लगभग 3,200 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जिले के ताहिरपुर में एक परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत ग्राम विकास विधेयक न केवल किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है बल्कि गांवों के विकास से भी हर तरह से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार के समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मंत्रालय 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र में सुझाव आमंत्रित करता है ताकि एक सुदृढ़ प्रणाली तैयार की जा सके। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सभी संवैधानिक स्थानों को संविधान की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं और अदालती फैसलों को नागरिकों के लिए उनकी भाषा में सुलभ किया जा सके। उत्तर प्रदेश के इटावा में हिंदी सेवा निधि ट्रस्ट के 33वें वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद की जाती है कि भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष सदस्यों के पदों के लिए हुए मतदान का अंतिम प्रतिशत आज जारी किया जाएगा। 2 दिसंबर को हुए पहले चरण सहित कुल 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मतों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ग्राफ 4 के तहत अपना अभियान तेज कर दिया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस दौरान 3,000 से अधिक निरीक्षण किए गए, 12,000 चालान काटे गए और 16,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई। सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरों और जिलाधिकारियों को निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने कल तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा सुनाई है। ये मामला सरकारी उपहारों में कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इन उपहारों को इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त किया था। अदालत ने पति पत्नी दोनों पर 1,64,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल रात चीन के हांगझोऊ में आयोजित विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को चीन के लियांग वेई केंग और वांग यांग से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2018 में पीवी सिंधु महिला एकल खिताब जीतकर भारत की एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता बनी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।